2000।
सोटी फर्नीचर वालों अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स वास्ते एक खास सूचना। लॉकडाउन दी मौजूदा सिचुएशन नु देखते हुए अपने कस्टमर्स दी सेफ्टी लई सोटी फर्नीचर ने कर्ब साइड पिकअप अते डोर डिलीवरी दी सर्विस शुरू कर दी है। तुसी इना दी वेबसाइट ते जाके अपना फर्नीचर पसंद करो ते अपना फोन नंबर इना नु ईमेल करो central@sodifurniture.com ते। सोटी फर्नीचर दी सेल्स टीम बेस्ट डील्स लई तुहानू आप फोन करेगी। खूबसूरत फर्नीचर बेस्ट प्राइसेस ते मिलेगा सोटी फर्नीचर तो।
टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स LEDs और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी और लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA। तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेली टाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9054551666। टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स।
एशियन फूड सेंटर 9057931338। आपके किचन की तमाम जरूरियात एक ही छत तले। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज एंड स्टेबल्स, ब्रेड डेयरी एंड एग, बेवरेज एंड कन्फेक्शनरी, ब्रांडेड फूड्स, पर्सनल केयर एंड हाउसहोल्ड, स्वीट्स एंड समोसास। Order now for in-store free pickup 9057931338. Home delivery is also available. Asian Food Center 9057931338. Asian Food Center.
क्या आपकी पॉलिसी इस पेंडेमिक में आपको कवर कर रही है? मालूम कीजिए मुझसे कॉन्टेक्ट करके। मैं हूँ फजल वदूद, इंश्योर प्रो फिनेंशियल सर्विसेज से। मेरा नंबर है 9056075000। 27 साल का इंश्योरेंस और अंडरराइटिंग का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको एक ऐसा प्लान दिलवाया जाए जो कि बेहतरीन हो और गारंटेड लोएस्ट रेट पे हो। कॉल कीजिए 9056075000। और हाँ, हर जुमेरात शाम को चैनल 770 पे मेरा प्रोग्राम सुनना ना भूलिएगा, जिसमें हम आपसे शेयर करते हैं बेहतरीन टिप्स इंश्योरेंस के बारे में।
अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ नासिर शाह। आपको पता है पिछले 20 सालों से हम मॉर्गेजेस कर रहे हैं, लोन्स कर रहे हैं और कमर्शियल मॉर्गेजेस कर रहे हैं। अगर आपको किसी तरह की मॉर्गेज चाहिए तो गारंटी आपको बेस्ट रेट ऑफर करेंगे और साथ साथ जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनका भी बड़ा ध्यान रखते हैं। और कमर्शियल मॉर्गेज कभी भी आपको चाहिए किसी तरह की, होटल मोटल गैस स्टेशन या कोई फ्रेंचाइज लेनी या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाय करना, तो उसके लिए भी हमें कॉल करें। और अगर आपको बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए तो उसके लिए भी हमें कॉल करें 6477419000 6477419000।
जी सामने नाजरी, वेलकम बैक अगेन साहब। 5:03:11 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं। अब से लेके 6 बजे तक साहब आपको पाकिस्तान, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, दुनिया भर में क्या हो रहा है, टोरंटो में क्या नई चीज़ है, ओंटेरियो में क्या नया है और इसके साथ साथ कनाडा में क्या नया है, ये सारी चीज़ों से बाखबर करवाएंगी शाजिया मलिक जी। और शाजी जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप?
वालेकुम सलाम मजीद भाई, मैं ठीक हूँ। मजीद भाई, आप हनीमून पे गए थे?
हनीमून पे गए थे?
हाँ।
जरूर गए होंगे।
अच्छा, याद नहीं आप? इट्स बीन डोंकीज इयर्स।
हनीमून को कैसे याद आ गया?
हाँ, मुझे इसलिए याद आया कि हनीमून का मतलब क्या है लोगों को आज तक समझ नहीं आया।
हाँ।
तो आज हम 770 से बताएंगे लोगों को कि हनीमून का क्या मतलब है।
हनी को मून पे ले जा रहे हैं।
हाँ, तो वो बिल्कुल मर्द के लिए ऐसे ही है, आदमी के लिए इट इज द लास्ट बेस्ट वोकेशन बिफोर वर्किंग फॉर द न्यू बॉस।
You got it.
That is honeymoon.
That is. ठप्पा लग जाता है।
ठप्पा लग गया ना, देखा?
That's it. Now
that's
you don't it. Have anything to say.
हाँ, तो अब honeymoon का मतलब समझ आ गया ना अच्छी तरह से?
100% जी। समझ आ गया। अभी क्या समझ में आया? बड़े ज़माने से समझ में आया।
समझ आया है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये कहा जाता है जी कि लड़के झूठ क्यों बोलते हैं और लड़कियां इतना मेकअप क्यों पहनती हैं। अच्छा, इसमें दो अब इसमें भी समझने वाली चीज है, इस पर भी अपने ठप्पा लगाना है,
ठप्पा लगा देंगे।
हाँ, इसलिए कि लड़कियां जो हैं वो हेयर से पे बिलीव करती हैं कि कौन सा लड़का अमीर है, करोड़पति का बेटा है, ये है वो, इसलिए लड़के झूठ बोलते हैं कि लड़कियां फंस जाए मेरे पास। और लड़के जो है वो लुक्स पे जाते हैं ज्यादा, तो इसलिए वो मेकअप लगाती हैं लड़कियां। अब समझ आइए, मेकअप के खर्चे क्यों है,
पूरी कहानी समझ,
रामलीला की ये कहानी है,
पूरी कहानी समझ में आ गई।
वो
जैसे मुईज अख्तर अल्लाह उनको जनरल सीख करे, वो कह रहे थे ना कि वो एक दफा एयरपोर्ट गए अपनी बीवी को देखने के लिए, तो सारी औरतें गुजरती चली आ रही हैं, तो नजर ही नहीं आ रही वो। तो पता लगा कि साहिबा चली आ रही हैं, तो अरे उन्होंने कहा कि आप मुझे देख रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, अरे कहाँ हो तुम? पता लगा कि वो वहाँ उनके जो एयरलाइन थी उसका वॉशरूम खराब हो गया था, तो ये मेकअप नहीं कर सकी, तो इनको पहचान नहीं सके वो। मुईज अख्तर अल्लाह उनको जनरल सीख करे, कहने के देख लीजिए साहब।
हो, ये तो हाथ हुआ उनके साथ,
बड़ा मतलब
डरे नहीं फिर वो,
हादसा हो गया, हादसा हो गया। वो पूरे रास्ते देखते रहे उनको बार बार के भाई ये वही है, ये वही है या कोई और है।
अच्छा,
और आजकल भी कुछ हालात ऐसे ही हैं।
अच्छा, हाँ, वो पार्लर्स बंद हैं,
पार्लर्स बंद हैं और सबके मूंछें,
सारी मलकियानियां जो है मलक बनी हुई हैं,
मूंछें मूंछें और दाढ़ियां निकल आई हैं उनकी,
निकल आई हैं और वो ताव दे रहे हैं,
वो ताव दे रहे हैं।
तो मासूम मर्द आपकी तरह के जो शादीशुदा हैं और कराची के हैं, वो डर रहे हैं और बहुत डर रहे हैं।
हाँ, कहते हैं यार ये वाकई में ये मैंने क्या किया है कि इनसे शादी की थी मैंने।
लेकिन आपको हौसला रखना चाहिए, क्योंकि आप ऐसी ख्वातीन के साथ इधर रह रहे हैं, खास तौर पे मुसलमान मर्द, तो उनको इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा हूरें दूंगा मैं।
हाँ, उसी पे
अल्लाह ताला को पता था पेंडेमिक आनी है,
उसी पे हम जिंदा हैं,
जिंदा है
कि भाई हाँ हूरें आनी है, हूरें आनी है, हूरें आनी है, छह छह फुट की है, तो उनको तो मैं फिर वो
सीढ़ी लगा के,
छह फुट से थोड़ा कम कर ले।
अच्छा अच्छा,
हाँ, हाँ। छह फुट से थोड़ा कम कर ले
तो सही है। मौलवी हजरात तो यही कहते हैं ना, लंबी लंबी होंगी छह छह फुट की, तो इसलिए।
अच्छा, हालांकि जितने भी मौलवी हजरात हैं वो कभी कोई छह फुट का नजर नहीं आया मुझे।
हाँ, बिल्कुल, ये बड़ी हैरत की बात
है ना, कोई मौलवी मुझे छह फुट का नजर नहीं आया, वो सारे मतलब या तो ये कि उनके पेट इतने निकल आते हैं कि वो थे छह फुट के मगर पांच फुट पांच के रह जाते हैं।
हाँ जी, बाकी हाइट पेट में चली जाती है,
बाकी हाइट जो है वो नीचे आती रहती है, पेट बड़ा हो गया तो वो चौड़े हो गए।
बिल्कुल बिल्कुल,
मैं भी एक जमाने में था, कहते हैं ना कि मैं भी एक जमाने में था मगर अब नहीं।
बस तो इसीलिए यही बात है, ये जो हमारे मुसलमानों के स्पेशली हमारे पाकिस्तान में ये जो ऐसे हमारी नैया ऐसे जा रही है ना, नीचे बह रही है, इसलिए कि इस कौम का पेट बड़ा हो गया है और दिमाग छोटा हो गया है। जी,
अब समझ में आया,
अब समझ में आया भाई, आज के सारे जो फिलसफे है ना, ये जो ज्ञान मैं आपको दे रही हूँ, ये प्लीज आप नोट कर लें, ये आपको किसी दिन काम आएंगे।
एग्जैक्टली, मैं तो नहीं नहीं, मैं तो मेरा तो सर का कंप्यूटर है जो वो चल रहा है,
ना
वो सारा टेप करता चला जा रहा है,
टेप करें इसको। हाँ, ऐसा ना कि फिर आपको बताया नहीं किसी,
ना 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 ना, ये तो टेप हो रहा है मामला,
बिल्कुल
मामला एकदम फुल टेप है।
फुल टेप है ना,
फुल टेप।
वेरी गुड। अच्छा जी, तो ये अब आपको मैं रोज ना इस तरह जिंदगी के जो है ना वो हकीकतें मैं आपको बताऊंगी माजिद भाई,
रामलीला की कहानी हो जाए।
हाँ, रामलीला की कहानी, बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा जी, आप जनाब, रामलीला की हमारी कहानी शुरू होती है हमारी वेबसाइट से।
अच्छा,
ठीक है माजिद भाई। अच्छा देखें, हम इतने कोई अच्छे लोग हैं ना।
हाँ जी,
अभी हॉलीडे सीजन शुरू हुआ चाहता है और हमने पहले ही पोस्टर लगा दिया जी हॉलीडे सीजन का। ठीक है जी,
क्या बात है जी,
क्या बात है, हम बड़े अजीम लोग हैं,
आप लोग दो हाथ आगे हो।
हाँ हाँ हाँ, हम हमारा हमारे हाथ कानून से लंबे हैं ना।
हाँ, और ये समझ लीजिए कि हमारे हॉलीडे शुरू हो गए
हैं। तो अच्छा, सबसे ऊपर जो है वो चल रही हैं ब्रेकिंग न्यूज चल रही हैं। उसके थोड़ा सा नीचे लेफ्ट साइड पे हमारी लाइव टीवी चल रहा है,
सही है।
उससे नीचे जो है लोकल न्यूज चल रही है,
सही है।
फिर उससे नीचे जो है हमारे सारे हेल्थ के टिप्स और लाइफ स्टाइल एंड एंटरटेनमेंट और वो सारा चल रहा है। और उसके नीचे पूरा उर्दू का सेक्शन है जी, जिसमें कि आप खबरें उर्दू में पढ़ें।
सही,
अगर आपको अंग्रेजी से इतना प्यार नहीं है, अंग्रेजी बीट पे आप नहीं चलना चाहते, तो आप उर्दू बीट पे चले,
उर्दू में सारी खबरें,
उर्दू में सारी खबरें। और फिर उसके बाद राइट हैंड साइड पे हमारा पूरा जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका सेक्शन है, तो वो है, तो देखें ऑल इन वन। हाँ,
एंड इट लुक्स वेरी नाइस।
हाँ जी, ये सारी चेंजेस अभी हुई हैं और आज कुछ नई खबरें जो है वो जो हमारा टीन जोन है ना, उसके अंदर आई है, तो जो यंगस्टर्स हैं वो पढ़ सकते हैं स्टोरीज, उनको अच्छी लगेंगी वो स्टोरीज। स्पेशली वो क्रिकेट कनाडा से रिलेटेड है तो वो यूथ जोन में आई हैं तो वो करें. तो इसीलिए हम आपको बताते हैं कि अगर आपके भी कोई बच्चे हैं हम उनको एनकरेज करना चाहते हैं तो आप प्लीज अपने जो है बच्चों को कहें कि हमारे यूथ जोन के लिए वो आर्टिकल्स भेज सकते हैं, पोएम्स भेज सकते हैं, अपनी कोई तस्वीरें अच्छी खींची हैं उन्होंने, वो अच्छी नेचर फोटोग्राफी करते हैं या दूसरी, तो वो हमको भेज सकते हैं. हम उनको डेफिनेटली उनके नाम के साथ उन सब चीजों को जो है पब्लिश करेंगे. और जनाब इसके अलावा हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनको आप जरूर करें थोड़ा सपोर्ट ताकि वो हमारे साथ चलते रहें. हमारे पहले स्पॉन्सर हैं न्यू फातिमा ग्रोसर, कादर भाई यहाँ पे होते हैं. अच्छी ग्रोसरीज के लिए आप उनको विजिट भी करें और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए इनको कॉल करें 905-848-7000 एशियन फूड सेंटर. यहाँ पे भी आपको वो तमाम ग्रोसरीज जो आपको चाहिए रोजमर्रा वो चाहें तो आप मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इनको कॉल करें 905-793-1338. और करी डिशेस, अगर आपका बहुत ही दिल है कुछ स्पेशलिटी डिशेस खाने का तो इनको आप विजिट कर सकते हैं या आपको यानी डिलीवरी आप देंगे जो है आप बैठ के खा नहीं सकते. दे आर लोकेटेड एट ईस्ट ऑफ मकावन एंड शेपर्ड. इनका नंबर है 416-546-6444 एंड जनाब हॉट स्टार $45 में पूरे साल की सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं. प्रोमो कोड यूज करें ई आवाज और इनको आप विजिट करें hotstar.com/CA. और जनाब अगर आप एक अच्छा चलता हुआ बिजनेस लेना चाहते हैं तो आप ब्रोस्टेड चिकन जो है अलबेक स्टाइल उनको आप कॉल करें 647-748-3444. दिस इज 647-748-3444. और यहां पे वो कहते हैं जी वर्ल्ड्स बेस्ट हम स्पाइसी चिकन सैंडविच और फिश सैंडविच हम बनाते हैं और आप इनके खाने डिलीवर करा सकते हैं थ्रू स्किप द डिशेज डोर डैश एंड ऊबर ईट्स. और जनाब आयशा मुनवर आपको पता है रूमिनिक एंड कंपनी से हैं और डेट सॉल्यूशंस स्पेशलिस्ट हैं. तो अगर आपका कोई भी मसला पड़ गया है डेट्स का तो आप इनको कॉल करें. बहुत पुराना इनका एक्सपीरियंस है और बहुत ही प्यार से बात करती हैं तो आपकी बात पूरी समझेंगी और फिर आपको मशवरा सही से देंगी. तो आप इनको विजिट कर सकते हैं.
मेरा ख्याल अब अपना कार्यक्रम शुरू किया जाए.
बस मजीद भाई आपने ये तो बताया है कि जो डील्स हो गई हैं कनाडा की जो है फाइजर के साथ और अब मॉडर्ना के साथ भी, तो मैं उसमें से थोड़ी सी डिटेल्स बस मैं ऐड ऑन इसके अंदर करूंगी कि मॉडर्ना के साथ भी जैसे ही वो कहते हैं कि हमारी डील फाइनलाइज हो जाएगी, हेल्थ कनाडा हमको ग्रीन सिग्नल देगा, विद इन 48 आवर्स वी विल रिसीव द फर्स्ट बैच ऑफ 168,000 डोजेस जो हैं वो हमारे पास जो हैं आनी शुरू हो जाएंगी विद इन 48 आवर्स. और वो कहते हैं कि मॉडर्ना की भी आपको दो डोजेस लेनी है लेकिन जैसे कि फाइजर की दो डोजेस आप लेते हैं ना तो उनके बीच में 21 डेज का जो है वो डिफरेंस होना चाहिए. ये कहते हैं कि ये जो मॉडर्ना की जो है इनकी भी दो ही डोजेज हैं लेकिन इनके बीच में डिफरेंस जो है वो 28 डेज का है पहली डोज और दूसरी डोज में. इसके अलावा वो कहते हैं जी कनाडा ने अभी तक जो सिक्योर किया है 20 मिलियन फाइजर की और 4 मिलियन जो है और अब आना शुरू हो जाएंगी. और इसके अलावा जो है वो कहते हैं जी 40 मिलियन हमने मॉडर्ना से कहा हुआ है. तो हाँ तो जैसे जैसे तो मतलब कहने का ये है कि इतना डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है कि ओहो मुझे नहीं मिलेगी. आज भी एक्सप्लेन किया गया है कि सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको स्पेशली वो जो लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हैं उनको मिलेंगे ये डोजेस और फिर उसके बाद जो 70 और 80 ईयर्स के ब्रैकेट में हैं उनको मिलेंगे जो कि मोस्ट वल्नरेबल है और जिस ब्रैकेट में काफी डेथ्स भी हुई हैं और फिर उसके बाद सारों को मिलेंगे. तो ये नहीं हो सकता कि कुछ कैनेडियंस को छोड़ दिया जाए और कुछ को दिया जाए. तो एज अ रिजल्ट इसीलिए ये मैंने नंबर्स बताए हैं कि परेशानी की कोई बात नहीं है. देयर आर इनफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्लेस विद बोथ दीज जो हैं
और इसके अलावा दो और भी हैं
जो कि अभी उनके बारे में अभी स्टडी की जा रही है. वो जैसे ही उनका भी हो जाएगा तो वो उसके लिए
मॉडर्ना के लिए इतने पॉजिटिव हम इसलिए हैं कि एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा और दूसरी ये बात है कि
एफडीए भी इस पे गौर कर रहा है.
एफडीए ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया आज
जी
एफडीए ने आज ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है मॉडर्ना को भी. तो वहां पर भी दो कंपनीज जो है वो सप्लाई कर रही है अमेरिका में भी मॉडर्ना एंड फाइजर और जो है हमको भी मॉडर्ना एंड फाइजर दोनों सप्लाई करेंगे.
लेकिन हमारे पास हेल्थ कनाडा की अप्रूवल आनी
बाकी है.
आ जाएगी तो फिर वो ऐसे होगा. अच्छा जी सीआरए ने आज कुछ हुई जैसे मैंने आपको कहा कि एजुकेशन लेटर्स भेजे हैं. ये नहीं कि आप एजुकेशन हासिल करें
डिग्री नहीं मिल रही
नहीं उसमें डिग्री कोई नहीं है मिलने वाली. 441,000 कैनेडियंस को भेजी गई है और इसका मकसद ये है कि इन सब लोगों को सर्व मिला था अब सर्व की जो शर्त थी वो ये थी कि आपके 2019 के जो टैक्सेस हैं वो फाइल होने जरूरी हैं, तो फिर हमको पता चलेगा कि आपने कितना काम किया, कितने आपके आवर्स रिड्यूस हुए या आपको निकाल दिया गया उसके बेस पे। अब इन्होंने ये जो 41,000 जो ये लेटर्स भेजे हैं लोगों को, वो इसलिए भेजे हैं कि, और सीआरए ने कहा है कि अगर आपको हमारी तरफ से ईमेल या लेटर आता है उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हमको ये बताएं कि आपने टैक्स फाइल किया था 2019 में कि नहीं किया था। हो सकता है हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं आई हो, और ये भी हम एनकरेज करते हैं कि अगर आपने सर्व लिया था और आपने अपना टैक्स फाइल नहीं किया था 2019 में तो आप कर लें।
अच्छा, यहां पर मैं एक बात मस्ट एंड एवरीबॉडी शुड लिसन वेरी केयरफुली कि स्कैमर्स, ये उनकी ईद हो जाएगी। आप जितने भी स्कैम कॉल्स आती ना आपको, वन थिंग फॉर श्योर आप ये याद रखें कि सीआरए आपको कॉल नहीं करेगा,
नहीं करेगा कभी,
सीआरए कभी कॉल नहीं करेगा। आपको एक ब्राउन लिफाफा आएगा जो कैनरा रेवेन्यू एजेंसी का, मगर ये कि वो आपको कॉल आनी शुरू हो जाएंगी आप कि आप जो है इतना पैसा ओ करते हैं, इतना पैसा ओ करते हैं, और वो ओइंग में आप अभी फौरी तौर पर हमें इतना 4,000-5,000 ये दे दें हम आपका, वरना तो आपको जेल हो जाएगी और पुलिस वाले आ जाएंगे और ये हो जाएगा। डोंट लिसन टू दोज गाइज एंड ये अपने आप को स्कैमर्स से बचाएं,
क्योंकि उन्होंने पहले भी कई बार जो है सीआरए ने कहा है कि हम कभी किसी को कॉल नहीं करते हैं।
सही?
हम या तो ईमेल भेजते हैं या फिर मोस्टली तो हम लेटर भेजते हैं।
लेटर ईमेल भी, ईमेल भी आपको स्कैमर्स की ईमेल आ सकती है, और वो उसके ऊपर वो लिखा होगा कि कैनरा रेवेन्यू एजेंसी वगैरह का, तो नो, आपको जो आएगा वो लेटर आएगा, आपको ना ही ईमेल आएगी और ना ही फोन कॉल्स आएंगे।
या तो लेटर का आप जरूर इंतजार करें।
Exactly.
तो अगर आपको आता है तो उसमें घबराने की फिर भी कोई बात नहीं है। आप अपना देख लें कि आपका जो ऑडिटर था ये जो भी आपका, उसने आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट की हुई थी कि नहीं की हुई।
Exactly.
अगर नहीं किया तो आप उसको बोल सकते हैं कि भाई ये तुम मेरी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दो, कर देंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा जी, डॉक्टर सुप्रिया जो शर्मा है उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास मॉडर्ना भी जल्द आ जाएगा, सूनर देन लेटर, क्योंकि इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं जो कि हेल्थ कनाडा को चाहिए और वो देखना चाहते हैं इसके ऊपर कि ये जो सारी स्टडी है, डेटा है, ये क्या इसकी एफिकेसी जैसे कि वो बोल रहे हैं वैसी है, ये इफेक्टिव है। तो वो कहती हैं कि जैसे ही ये हमारे पास आ जाएगा तो हम इसके ऊपर फौरन जो है वो करेंगे। लेकिन उन्होंने और भी एक चीज क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा कि भाई अब जो दो और भी कंपनियां इन लाइन है जैसे कि एस्ट्राजेनेका है और जॉनसन एंड जॉनसन है, उसको शायद टाइम लग जाता है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका का एक तो बीच में प्रॉब्लम आ गया था और उन्होंने हॉल्ट भी कर दी थी अपनी जो थी स्टडीज जो थी, एज अ रिजल्ट हमारे पास कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन और डेटा नहीं है। एंड सेम इज द केस विद जॉनसन एंड जॉनसन, वो तो एस्ट्राजेनेका से भी थोड़ा पीछे हैं रिसर्च के अंदर। तो जैसे ही इन
दोनों की थर्ड स्टेज की ट्रायल्स
जी चल रहे हैं हाँ जी, लेकिन वो कहते हैं इनकी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास आनी जरूरी है, तो जब वो डेटा और डॉक्यूमेंटेशन आएगी फिर हम इसको करेंगे, बट दिस विल टेक सम टाइम।
एग्जैक्टली,
दिस विल टेक सम टाइम। और इसके अलावा जो है हमारे शुरू ही हो गए हैं, आपको पता ही है, ट्रोनो, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक में, और फिर अब जो मैनिटोबा और अल्बर्टा है उसमें अब कल से शुरू हो रही है वैक्सीनेशंस, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑफ कनाडा है उसमें वीकेंड के ऊपर वैक्सीनेशंस जो है वो शुरू हो जाएंगी। अच्छा जनाब, आज जो है टुडे इज द थर्ड डेथ एनिवर्सरी ऑफ ये जो टोरंटो के बिलियनियर्स थे, हैरी और हनी एंड बैरी शर्मन जो थे ये थे, और आपको पता ही है बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट थे, और इनको जो है इनका जो नॉर्थ यॉर्क का मैं था उसके अंदर 2017 में ये
बेचारे, मस्ट से दैट पायनियर ऑफ
एपोटेक्स, हां जी
एपोटेक्स के ये, और एपोटेक्स वन ऑफ द बिगेस्ट
फार्मास्यूटिकल
कंपनी है वहां के, उन्होंने उसकी बुनियाद रखी थी।
जी जी, तो इनकी उम्र जो थी, ये जो थे बैरी जो थे इनकी उम्र थी 75, और इनकी वाइफ जो हनी थी उनकी उम्र थी 70 इयर्स। तो बहुत अरसे से पुलिस जो है फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है, और पूरी एक ये डिटेल रिपोर्ट आई थी कि सबसे पहले कौन आया मेंशन में, वो एक काम करने वाली जो आती थी वो आई, और वो अक्सर देखती थी कि ये लोग बैठे होते थे चाय के टेबल पे किचन में और अखबार पढ़े होते थे कुछ, इसी तरह एक इनका पर्सनल ट्रेनर आता था, तो वो तो मतलब पूरी डिटेल्स फॉलो तो कर रही है पुलिस, लेकिन अभी तक ना तो कोई सस्पेक्ट सामने आया ना कुछ। लेकिन पुलिस ने, टोरंटो पुलिस ने कहा है कि पीपल ऑफ इंटरेस्ट जो है उनको हमने इंडिकेट किया है, और हम भी ये चाहते हैं कि इस केस में अब क्लोजर लाई जाए ताकि जो बच्चे हैं या फैमिली जो है उसको थोड़ा सा जो है सुकून आ जाए कि भाई हमारे पेरेंट्स के जो قاتل ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. تو اٹس ناٹ کہ ٹورنٹو پولیس اس کے پیچھے نہیں ہے. تو انہوں نے آج کہا ہے, انہوں نے کہا کہ یس وی نو دا انویسٹیگیشن ہیز ٹیکن لانگ اینڈ اٹس ویری ویری فرسٹریٹنگ, لیکن پھر بھی جو ہے وی آر کانسٹنٹلی ورکنگ آن اٹ. تو اس میں ہم بھولے نہیں ہیں. اچھا مائی بھائی, یہ تو آپ نے بات بتائی ہے ڈاکٹر مائیکل وارنر کی, میڈیکل ڈائریکٹر آف کریٹیکل کیئر ایٹ مائیکل گیرن ہاسپٹل, کہ وہ ہوتے جا رہے ہیں. میں اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل صرف دوں گی. اس میں ڈیٹیلز یہ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سچویشن جو جنوری تک پہنچتے پہنچتے جو ہے بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے, اس لیے کہ کرنٹلی جو وہ پیشنٹس ریسیو کر رہے ہیں آئی سی یو کے لیے وہ 1765 ہیں. اور اس میں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیڈز ہیں یہ اب جلدی سے بھرتے چلے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اندازہ ہے کہ جو ٹوٹل چونکہ آنٹیریو کے اندر بیڈز جو ہیں ذرا 2000 سے تھوڑے اوپر ہیں, تو اگر احتیاط نہ کی گئی اور یہ کیسز زیادہ بڑھ گئے اور آنٹیریو میں جیسے 2100 سے تھوڑے سے, تو ان سے بھی اگر نمبرز اوپر چلے گئے پھر اوور ویلم ہو جائیں گے ہاسپٹلز. تو سچویشن جو ہے وہ اس وقت جو ان کو دکھ رہی ہے وہ بیڈ ٹو ورس کی طرف جا رہی ہے.
مگر ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں کہ جو ہم بتا رہے ہیں نا کہ 2136 آئی سی یو کے بیڈز ہیں, مگر ڈاکٹر وارنر نے یہی کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ بیڈز آن پیپر ہے, ناٹ ایکٹیو.
اس لیے کیونکہ نہ تو سٹاف ہے وہاں پہ, ہاں سٹافنگ کے پرابلمز ہیں,
سٹافنگ اینڈ نرسنگ, نرسنگ اینڈ سٹافنگ کے وہاں پاس اتنا سٹافنگ اور اتنی نرسنگ. اور وہ جو آئی سی یو کے ہوتے ہیں نا تو ان کو تو کانسٹنٹ آپ نے
مانیٹر کرنا ہے.
تو اس کی وجہ سے ایک کام جو خراب ہو رہا ہے آج کل وہ یہ کہ جتنے بھی ہارٹ سرجریز تھیں یا کڈنی کی سرجریز تھیں یا دوسری سرجریز تھیں ان کو پوسٹ پون کرنا پڑ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ بھائی اگر اور جنوری میں اگر اور ان کا کہنا یہی ہے کہ جنوری میں اور بھی خراب ہو سکتے ہیں, اور جنوری میں اگر اور خدا نخواستہ خراب ہو گئی حالات تو ہمارے پاس آئی سی یو کے بیڈز نہیں ہیں. تو دیٹس دا ٹائم دیٹ ڈاکٹرز ہیو ٹو میک ڈیسیژنز وچ از ناٹ اے ویری گڈ ون.
ویری گڈ ون جی. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ سچویشن بیڈ ٹو ورس کی طرف جا رہی ہے
جی,
بجائے اس کے کہ وہ بیٹر کی طرف جائے. اچھا جی, کریا کی آج رپورٹ جو آئی ہے اس وہ بھی ماجد بھائی اس میں بھی صرف تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے 511449 ہاؤسز جو تھے وہ اس سال میں ابھی تک جو ہیں وہ سیل کیے گئے ہیں, اور جو ایوریج نیشنل پرائز تھی وہ 603,000 کے قریب تھی. تو وچ از جو کہ شو کرتی ہے 13.8% جو ہے اوپر کی طرف کا ٹرینڈ شو کرتی ہے کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر ان دا سیم منتھ. اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرائسز ایوریج پرائسز لیکن ہیں جو ہم سوچ رہے تھے کہ اوپر جائیں گی وہ کچھ ایکسپیکٹیشن سے تھوڑی سی لو رہی ہیں. تو مگر پھر بھی جو ریئل اسٹیٹ جو سیکٹر ہے اٹ از ڈوئنگ
اکٹوبر ٹو نومبر 1.5% کم آیا ہے. اوکے, اکٹوبر سے لے کے نومبر تک مگر اسٹل 13.8% انکریز ان دا پرائز. اور یہ جو پرائز ہے نا یہ 603,000 کی, یہ جسٹ لک ایٹ اٹ کے پورے نیشنل کی ہے. تو اس میں بہت سارے پروونسز جہاں پر پرائسز بہت کم ہیں تو وہاں کی بھی ہے, اور چھوٹے چھوٹے علاقے جو ہیں ان کی بھی پرائسز سب کو ملا کے ایوریج کیا ہے. اگر آپ ٹورانٹو اور وینکوور جو دو ہاٹ مارکیٹس ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر یو کی ناٹ فائنڈ اے ہاؤس فار $603,000. تو وہاں کی پرائسز تو ملین ڈالر سے اوپر کی ہیں.
وینکوور میں تو کوئی بھی گھر جو بالکل چھوٹا سا بھی جو گھر ہے وہ تو ملین ڈالر سے کم کا نہیں ہے, بالکل چھوٹا سا گھر ہے. اور وہ ایسا نہیں ہے بہت کہ اس میں آپ بہت فریلی جو ہے فٹبال کھیل سکتے ہیں اندر جا کے, چھوٹے چھوٹے گھر ہیں وہاں پہ. اچھا جی, یہ ماجد بھائی بڑی ہی عجیب ایک بات ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ وین گریٹزی جو ہیں وہ بڑے ہال آف فیمر ہیں. تو ان کے جو گھر میں ان کی فیملی نے جو ہے وہ پولیس کو بتایا کچھ عرصہ پہلے, برینفورڈ پولیس کو, کہ ان کے گھر سے 500,000 یو ایس ڈالرز کے ورث آف میموریبلیا جو تھا ان کے گھر سے چوری ہو گیا. اب یہ جو چیز تھی یہ برینفورڈ پولیس جو تھی اکیلے نہیں کر سکتی تھی, تو انہوں نے آر سی ایم پی اور او پی پی کو کہا. تو 3 مہینے تک یہ انویسٹیگیشنز ہوتی رہیں. 3 مہینے کی انویسٹیگیشنز کے بعد ان تینوں نے مل کے کچھ घर जो थे उनको पिन पॉइंट किया और उन घरों में उन्होंने कहा कि ये वो घर हो सकते हैं जिन्होंने ये चीजें चोरी की होंगी। तो उसमें अब उन लोगों ने दो लोग जो हैं उनको अब चार्ज किया है, एक ओकविल का रहने वाला आदमी है, 58 इयर्स उसकी एज है, और एक औरत है जो है वहां की ब्रॉकविल की, उसकी भी 58 इयर्स ओल्ड वो भी है। तो इनको अब चार्ज किया गया है विथ थेफ्ट एंड पोजेशन ओवर $5,000। तो ये वो कहते हैं कुछ चीजें रिकवर हो गई हैं और कुछ जो है वो उनका है, तो अब इनको जो है किया जाएगा कोर्ट में नेक्स्ट मंथ में किया जा सकता है इनको। अच्छा जी, इसी तरह पुलिस ने एक, और ये जो ये मैं बता रही थी अभी खबरों में कि बड़ा एक अजीब वाकया हुआ। अच्छा, स्टील्स एवेन्यू की एक पार्किंग लॉट में एक आदमी ने अपनी गाड़ी पार्क की, दूसरा एक आदमी वहां पे आ गया, उसने कहा तू भाई सही नहीं की थी गड्डी पार्क जड़ी है, तो उसने कहा नहीं नहीं मैंने बिल्कुल ठीक किया। तो उसको इतना गुस्सा आ गया कि उसने गाड़ी लाके उस आदमी को मारने की कोशिश की, तो उस आदमी ने जंप करके उसकी गाड़ी के ऊपर चढ़ गया ऐसे करके और बोनट पकड़ लिया और ऐसे करके, और साथ ही उसने चीखना शुरू किया जो आसपास लोग थे कि प्लीज कॉल पुलिस, और फिर उसने उसकी गाड़ी भी डैमेज की उस आदमी की और ऐसे करके। तो अब पुलिस ने उस आदमी को पकड़ा और वो उसकी उम्र छोटी नहीं है, उसका नाम भी उन्होंने रिलीज किया है, सैम ग्रीन उस आदमी का नाम है, 73 इयर्स का है। तो इतना गुस्सा उसको आ गया तो कि उसको मारने लगा उस लड़के को,
कुछ हुआ होगा।
तो अब पुलिस ने उसको चार्ज किया है सैम को फॉर डेंजरस ड्राइविंग असॉल्ट मिस्चिफ अंडर 5,000, और अब इसको भी जो है कोर्ट में जनवरी के अंदर जनवरी 21 को इसको वो करेंगे। तो ये बड़ी वायरल हो रही थी पिक्चर, वो ऐसे जंप करके उसकी ना ऐसे बोनेट और ऐसे खिड़कियां उसने पकड़ी हुई और चिल्ला रहा है लोगों को, कह रहा है पुलिस को बुलाओ पुलिस को बुलाओ। तो आई मीन वेरी स्ट्रेंज। अच्छा जी, नाइजीरिया के अंदर जो है तकरीबन कोई 330 स्टूडेंट्स जो हैं उनको अबडक्ट कर लिया गया था और उनको पकड़ के ले गए थे और पता नहीं चल रहा था अथॉरिटीज को, तो अब पता चला है जी बोको हैरम वाले जो हैं वो उनको लेके चले गए हैं। तो अब जब अथॉरिटीज ने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा तो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल के, भाई तुम लोग इनको क्यों पकड़ के ले गए हो? तो उन्होंने कहा है जी कि ये जो तुम वेस्टर्न एजुकेशन इनको दे रहे हो दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू इस्लाम, तो इसलिए हम इनको पकड़ के ले गए कि तुम इनको मुसलमान नहीं रहने दोगे, तुम इनको वेस्टर्नर बना दोगे। तो एक ऑडियो मैसेज वहां पे गवर्नमेंट को भेजा है, बोको हैरम के जो लीडर हैं अबू बकर शेकू, उन्होंने कहा है ये सारी चीजें जो हैं उस वीडियो जो क्लिप ऑडियो क्लिप भेजा है उसके अंदर उन्होंने बात की है। अच्छा जी, ये जो हम आपको बता रहे थे कि ट्विटर के ऊपर भी कोई मर्डर कर सकता है, तो जनाब बिल्कुल कर सकता है। एक लड़का जापान के अंदर जी, उसको नाम दिया गया है ट्विटर किलर का। अच्छा, अब वो क्या करता था, मोस्टली लड़कियों को जो डिप्रेस होती थी या कुछ होती थी जो कहती थी मैं सुसाइड कमिट कर लूंगी, तो उसको वो कहता था तुम मेरे घर पे आओ मैं तुम्हें असिस्ट करूंगा सुसाइड करने के लिए। इस लड़के का नाम है टाकाहिरो शिराशी, ये जापानीज है और 30 इयर्स इसकी एज है। तो ना सिर्फ ये कि ये अपने घर में उनको बुला के और कहता था जी मैं तुम्हें हेल्प करूंगा मरने के लिए, बल्कि ये कभी कभी क्या करता था उनके टुकड़े कर देता था और बड़े बैडली उनको करके। तो इस तरह तो बहुत अरसे से पुलिस जो थी वहां पे ट्रोनो उसकी जापान की इसके पीछे थी वहां पे और फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही थी। इसने 8 लड़कों को और एक लड़के को जो है जिनकी के उम्रें जो है 15 से 26 ईयर्स के बीच में थी, उन सबको जो है हेल्प किया सुसाइड करने में। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लॉन्गेस्ट हिस्ट्री ऑफ जापान ये हो रहा है कि इस लड़के को डेथ सेंटेंस दी जा रही है, वरना जापान में अब डेथ सेंटेंस नहीं दी जाती है। तो जी ये ट्विटर के ऊपर उनको कांटेक्ट करता था और उनको कहता था तुम मेरे घर आओ मैं तुम्हें मरने में हेल्प करूंगा। तो ये दैट वाज वेरी अच्छा जी, फाइनली जो इलेक्टोरल कॉलेज है और जो सेनेटर मिच मैकोनल हैं उन्होंने फाइनली कह दिया है कि जो बाइडन हमारा प्रेसिडेंट है, और उन्होंने कह दिया है मैंने बात कर ली है इलेक्टोरल जो कॉलेज है उससे और उन्होंने आपको जो है वो कर लिया है, अब हमने जो है वो चीजें भेज दी हैं रिजल्ट्स वाशिंगटन में, अब वो जो है 6 जनवरी को टैली की जाएंगी और जो है वो माइक पेंस साहब इसका अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन अमरीका में ट्रंप साहब के जो सपोर्टर्स हैं उनके प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं और लोग और लोगों की बहुत परेशानी है, उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं ऐसा ना होए कि कोई सिविल वॉर जैसा कुछ माहौल जो है
सिविल अनरेस्ट होगी, सिविल अनरेस्ट
हाँ, कि इतना केओस ना हो जाए मुल्क के अंदर और जो है ये चीजें बहुत,
क्योंकि देखिए ना जो उनका लीडर जो है जनाब ट्रंप साहब, ट्रंप साहब को चाहिए कि वो एक्सेप्ट करें। अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनके जो हमदर्द लोग हैं वो ऐसी सड़कों में बाहर आते रहेंगे।
जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा अच्छा मोहित भाई, आज जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है अमेरिका के अंदर, उन्होंने आज कहा है, एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी डेंजरस, उन्होंने कहा है जी कि हमारे और हमारे गवर्नमेंट के बहुत सारे जो ऐसे सेंसिटिव अदारे हैं उनके कंप्यूटर्स को हैक किया गया है, और ये हैकिंग दिस टाइम अराउंड वाज सो सीरियस कि इन्होंने सबको जो है फोन कॉल्स किए इमीडिएटली कि अपने सिस्टम्स को शट डाउन करें आप, ये इतना सीरियस है। और इन्होंने फाइंड आउट किया है जी कि ये जो है ये सिर्फ जो है रशिया ही इस तरह का काम कर सकता है। इनको इतला दी थी एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है फाइबर फाई, उसने कि ये हम देख रहे हैं एक्टिविटी के कोई गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मोस्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैक करने की कोशिश कर रहा है। तो आप फौरन, तो होमलैंड डिपार्टमेंट ने उसी वक्त जो लिया, लेकिन इनको लगता है कि काफी ब्रीच हो सकता है डेटा का, और इसीलिए इसने इन्होंने जो भी और भी जो बाकी की जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी उनको कहा कि शट डाउन करो सिस्टम अपने जो है फौरन। और इन्होंने कहा कि जिस लेवल का हमारे ऊपर अटैक किया गया है, ये जो कैपेबिलिटीज हैं ये सिर्फ रशियंस के पास हैं।
वाओ,
ये और किसी के पास अमेरिका में नहीं है। और मुझे बड़ी हैरत हुई, उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया इसमें।
हाँ, देखिए चाइना का नाम नहीं
लिया, क्योंकि फटाफट चाइना का नाम ले लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये जो एक्सपर्टीज उन्होंने कहा है स्पेसिफिकली होमलैंड डिपार्टमेंट ने कि ये एक्सपर्टीज सिर्फ रशियंस के पास है, तो हमें लगता है कि ये उन्होंने किया, तो अलर्ट किया गया। और भी जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अमेरिका में, उनको उनके ऊपर भी अटैक किया गया, तो उनको भी आज जितनी बड़ी कंपनीज थी उनको कहा गया था। इसके अलावा इस तरह के जो अलर्ट्स हैं वो ब्रिटेन और आयरलैंड की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने भी बताए हैं कि हमारे ऊपर भी रशिया के जो हैं ऐसे अटैक्स हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पे हो रहे हैं। तो दिस वाज समथिंग वेरी सीरियस टुडे। और आपको पता ही है कि आपने बता ही दिया ये इंफॉर्मेशन कि अटॉर्नी जनरल विलियम बार साहब जो हैं वो अब रेजिग्नेशन दे रहे हैं। तो वो असल में उसकी डिटेल ये है कि वो जो हैं गए थे व्हाइट हाउस में गए थे, और उन्होंने जाके अब पता नहीं अब उन्होंने क्या बात की है, लेकिन ट्रंप साहब ने ट्वीट की है एक उसके ऊपर। उन्होंने कहा जी कि फाइनली जो है ये बार साहब ये अब अपना रेजिग्नेशन इन्होंने मुझे दे दिया है, ही हैज लेफ्ट द रेजिग्नेशन लेटर विद मी, एंड जो है वो उन्होंने तो वो कहते हैं बार साहब ने मुझे ये कहा है कि ही वॉन्ट्स टू स्पेंड क्रिसमस with his family. तो इसलिए उन्होंने मुझे रेजिग्नेशन दे दिया है।
देख ले,
एज इफ जिन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया वो अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस नहीं करेंगे।
नहीं नहीं नहीं,
नहीं, नहीं करेंगे ना, तो वो आप तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं।
ना, 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 वो सिर्फ जिसको क्रिसमस करनी है अपने
फैमिली, रेजिग्नेशन करना पड़ेगा,
वो रिजाइन कर दे।
हाँ, रिजाइन करेगा तो ही आप क्रिसमस कर सकते हैं। तो ये कहा है जी उन्होंने ट्रंप साहब ने अपनी जनाब ट्वीट में। अच्छा जी, इंडिया के अंदर जो जारी है फार्मर्स के प्रोटेस्ट जो है वो अब इंटेंसीफाई होंगे कुछ दिनों में, क्योंकि और भी इलाकों के लोग कुछ फार्मर्स जो है उनके साथ आके मिल रहे हैं। लेकिन आज की जो बड़ी अनाउंसमेंट है वो ये है कि तकरीबन 2000 विमेन जो हैं वो भी इन फार्मर्स की फैमिली को जो बिलोंग करती हैं वो भी अब इनको जो है आके ज्वाइन कर रही हैं। तो अब इसमें जो फार्मर्स के जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि अब चूंकि औरतें आ गई हैं तो इनके लिए सेपरेट टॉयलेट्स बनाने पड़ेंगे, इनके लिए सेपरेट जो है वो खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, और इनके लिए टेंट्स लगाने पड़ेंगे सोने के लिए भी, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर दिल्ली के पास भी अब सर्दी का मौसम है, तो वहां पर भी सर्दी है। तो वो कह रहे हैं इसी तरह जो अब है इसमें, मीन वाइल इसमें क्या हुआ है कि जो इंडिया के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, उन्होंने फिर से एक बार कहा है इन सारे फार्मर्स को, उन्होंने कहा कि भई आप आ जाएं, आपके साथ हम बात करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, आप बैठो बात करो। लेकिन फिर भी अमित शाह साहब ने कहा है कि हम अमेंडमेंट करेंगे उनके बिल्स के, वो जो तीन बिल्स हैं उन्होंने अभी तक भी ये नहीं ये कहा है कि गवर्नमेंट उनको खत्म पूरी तरह से करने को तैयार है, नहीं, उन्होंने फिर से कहा है अमेंडमेंट करेंगे। इसके बीच में जो बीजेपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने ये भी क्लेम किया है, उन्होंने कहा है कि ये जो हैं ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं फार्मर्स, ये अपनी जो डिमांड्स जो थीन की इनिशियल उनके ऊपर स्टिक नहीं कर रहे हैं, ये हर वक्त डिमांड्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो चूंकि ये बढ़ाते चले जा रहे हैं तो इसलिए जो है हमारे लिए मुश्किल हो गया है इनके साथ कोप करना। तो मगर फार्मर्स भी अपनी जगह पे अटके हुए हैं, वो कहते हैं कि यू हैव टू रिपील, तो रिपील नहीं करेंगे तो हम नहीं हटेंगे। तो ऐसे है जी। अच्छा जनाब, ये अब क्या हुआ है कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ स्किप कर दिया है शायद, नहीं। अच्छा जी, अब ये क्या हुआ है इंडिया के अंदर, एक और खबर है माजिद भाई, कि जो श्रोमणी अकाली दल के चीफ हैं सुखबीर सिंह बादल साहब, یہ میں نے ابھی جو ہیڈ لائنز میں بھی بتایا تھا کہ یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ چلا رہے ہیں کیونکہ وہ ملک کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. اور یہ سب سے پہلے یہ ریٹرک اس وقت سامنے آنا شروع ہوا تھا جب سی اے آیا تھا. تو سی اے جایا آیا تھا تو یہ بڑے جو بی جے پی کے جیالے جو چینلز ہیں الیجڈلی میڈیا چینلز اور وہ سارے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ ساری سازشیں جو ملک میں ہو رہی ہیں, یہ جو جلسے اور جلوس اور یہ ریلیز نکل رہی ہیں, یہ سب ٹکڑے ٹکڑے گینگ کر رہا ہے. تو اس میں آج سکھبیر سنگھ بادل صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے یہ سب سے بڑی ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے کیونکہ یہ نیشنل یونٹی کے ٹکڑے کر رہی ہے. اور آج انہوں نے بی جے پی گورنمنٹ کو بڑی وارننگ دی ہے. انہوں نے کہا کہ تم لوگ ہندوؤں کو سکھوں سے لڑانا چاہتے ہو جبکہ ہندو اور سکھ پنجاب میں بالکل اکٹھے رہتے ہیں.
صحیح.
اور اسی طرح تم لوگ جو ہے جیسے کہ تم لوگوں نے ہندوؤں کو مسلمانوں کے اگینسٹ لڑایا تھا اور ہندوؤں کو مسلمانوں کے اگینسٹ کیا, اسی طرح تم یہ سازش کر رہے ہو ہم کو لڑانے کی, تو ہم نہیں لڑیں گے. تو تم یہ اگر نیشنل یونٹی کو تم نے ایسے ختم کرنے کی کوشش کی تو یہ خراب ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آواز ہے یہ فارمرز کی ہے اور فارمرز جو ہیں وہ سارے بڑے پیٹریوٹک ہیں. آپ کی ان حرکتوں سے جو پیٹریوٹک پنجابی ہیں ان کے اندر, انہوں نے کہا ہے کہ کومیونل فلیمز کین اگین یو نو کیچ فائر. ہاں تو کیچ فائر تو وہ کہہ رہے ہیں آپ اس طرح سے نہ کریں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ بی جے پی کی جو گورنمنٹ تھی اس کے ساتھ الائنس تھا سیڈ کا, شرومنی اکالی دل کا, تو پھر وہ نکل آئے تھے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یونین منسٹر تھیں ان کی جو ہیں سیڈ کی لیڈر ہرسمرت کور بادل, تو وہ بھی پھر انہوں نے ریزائن کر دیا تھا اور یہ لوگ پھر سارے الائنس سے باہر آ گئے تھے. تو اس لیے اب جو ہے ان کے بیچ میں رفٹ جو ہے کافی بڑھ گئی ہے. اچھا جی, جیسے ہم نے اگین آپ کو بتایا تھا خبروں کے بیچ میں, سوری خبروں سے پہلے اس میں ہیڈ لائنز میں, کہ ایک دا پرنٹ کی بڑی بیوٹیفل اسٹوری آئی ہے آج نتن پائے صاحب کی. And he is the director of Takshashila Institute. اور یہ ایک بالکل ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ ایجوکیشنل پالیسیز اور جو ہے ریسرچ کے اوپر جو ہے بیسڈ ہے, تھنک ٹینک ہے بیسیکلی انڈیا کا. تو ان کا آج ایک بہت زبردست آرٹیکل آیا ہے اس کے اندر, دا پرنٹ کے اندر. اچھا, انہوں نے کہا ہے ان کے جو ہیڈ لائن ہے ان کے جو آج آرٹیکل کی, اٹ سیز Indians debate too much democracy but there is not whimper for too little republic. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ساری ملک کے اندر لڑائی چل رہی ہے یہ ڈیموکریسی کی نہیں ہے. ہم کو اب ریفارمز کی ضرورت ہے کیونکہ اب ایک ایسی گورنمنٹ ہے جو کہ ہندتوا کا جو ہمارا ہے وہ ایک فلسفی ملک کے اندر چلا رہی ہے جس میں کہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے. اور جب آپ لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو پھر ڈیموکریسی نہیں چلتی ہے. ڈیموکریسی کے چلنے کے لیے انٹرنل یونٹی ہونا بہت ضروری ہے. نتن پائے صاحب کا یہ بھی خیال ہے کہ ہم جب اس طرح کی چیزیں لاتے ہیں اور ہم ریفارمز نہیں کرتے ہیں اپنے سوسائٹیز کے اندر تو ڈسٹرسٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ کمیونٹیز میں پیدا ہو جاتا ہے اور ایز اے ریزلٹ ڈیموکریسی جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہو جاتی ہے.
صحیح.
اور انہوں نے یہ بھی یہ کہا ہے اس میں کہ یہ جو آئیڈیا آف ریپبلک از بیونڈ اسٹیٹ, تو ہیڈ از دا پریزیڈنٹ. تو وہ کہتے ہیں اینڈ دا پریزیڈنٹ از ناٹ اے مونارک. And as a result in a democratic society, if you are a president or a prime minister and you are not a monarch, then you cannot run society with tyranny. You need to run the country under democratic values. تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ انڈیا کے اندر نظر نہیں آ رہے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا جی کہ it's not the question of democracy. It's the question of creating trust and unity and making democracy functional. تو یہ بہت بیوٹیفل ان کا یہ آرٹیکل ہے, تو اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ضرور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. پاکستان کے اندر جی مولانا جو فضل الرحمان صاحب ہیں, جے یو آئی ایف کے جو چیف ہیں, آج نیب نے ان کے خلاف جو ہے انویسٹیگیشن جو ہے وہ شروع کی ہے کہ انہوں نے اللیگل لینڈ جو ہے اسلام آباد میں لی ہے. اکارڈنگ ٹو نیب الیجڈلی دس واز سولڈ 64 کنالز آف لینڈ ان اسلام آباد واز سولڈ ٹو مولانا صاحب انڈر نواز شریف صاحب. اور اس کی قیمت اس وقت جب اس کو سیل کیا گیا تھا تو اس کی قیمت تھی 14 ملین روپیز. جبکہ مولانا صاحب کو یہ صرف 4 million rupees میں دی گئی تھی یہ ساری لینڈ.
بہت اچھا آدمی نا اس لیے.
ہاں بہت ہی نیک شریف.
بہت نیک, بہت شریف آدمی ہے.
بہت شریف آدمی ہے تو ظاہر ہے ان کو شرافت کا وہ تو ملنا چاہیے.
ہاں ہاں ان کو تو
تمغہ ملنا چاہیے.
ضرور ضرور.
تو نواز شریف صاحب نے ان کو یہ دی تھی.
ہم کو نہیں ملے گا اتنے میں, مگر مولانا صاحب کیونکہ مولانا صاحب ہیں تو مولانا صاحب کو ضرور.
آپ مولانا تھوڑی ہیں مجد بھائی.
ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں ہم نہیں ہیں نا, تو اس لیے تو وہ نا ان کو مولانا صاحب کو تو پھر.
اور اسلام آباد جیسی پرائم جگہ پہ آپ جہاں پہ لوگ جو ہیں ساری ساری زندگی باہر مڈل ایسٹ میں کما کما کے اور گھاس کاٹ کاٹ کے آتے ہیں, سوچتے ہیں ایک ٹکڑا زمین
چھوٹا سا مل جائے
ہیں اسلام آباد جیسی جگہ پہ,
چھوٹا سا مل جائے,
چھوٹا سا ایک مل جائے. لیکن مولانا صاحب آپ دیکھ لیں کتنے نیک آدمی ہیں, ان کو 64 canal مجد بھائی لینڈ دی گئی.
تو پھر اللہ کے بھی قریب ہے نا,
اللہ کے بہت قریب ہیں. ہاں جی ہاں جی. تو آپ نے بھی کوئی نیک کام کیے ہوتے اللہ کے,
دیکھ لیں مجھے کچھ
مولانے ہوتے ماجد بھائی
تو دو کنال مل جاتے.
ہاں آپ کو بھی کچھ مل جاتا, مگر نہیں آپ نے نیکی کا راستہ پڑھا ہی نہیں ہے, آپ نے صحیح کام زندگی میں کیا ہی نہیں
ہے, تو اس لیے
آپ کو انہوں نے اس لسٹ میں سے نکال دیا.
ہاں مولانا صاحب کو دیجیے, میرا حصہ بھی مولانا صاحب کو ملا
جو موسٹ وانٹیڈ لسٹ تھی, اس میں سے آپ کا نام نکال دیا.
نکال دیا
انہوں نے کہا ماجد جمال کو بالکل کچھ نہیں ملے گا,
کچھ نہیں ملے گا.
ہاں بالکل بھی اللہ کے قریب بھی نہیں ہے اور مولانا بھی نہیں ہے, تو بس اس کو جو ہے وہ نہیں ملے گا کچھ بھی. تو جناب ان کو دیا گیا تھا. تو یہ جہاں یہ جو ہیں اب اس پہ اب ڈٹائی دیکھیں کہ مولانا جو عطاء الرحمان صاحب ہیں جے یو ایف کے پی کے جو چیف ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ سب بکواس ہے اور یہ جھوٹ ہے اور یہ ساری جو انفارمیشن آپ نے اکٹھی نیب کر رہا ہے یہ بھی نیب کے ڈسٹ بن میں جائے گی, جیسے کہ اس کی باقی تمام جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ بھی جا رہی ہیں. تو اس لیے جناب تو ٹھیک ہے ماجد بھائی, چلو ٹھیک ہے آپ کی وہ پٹیشن یا وہ جو تھی وہ ڈسٹ بن میں جانے سے بچ گئی ہے ماجد بھائی, آپ دیکھ لیں. یہ بڑا آپ کے لیے جو ہے نا ایک
باعزت چیز,
باعزت چیز. جی جی. اچھا جی, لاہور پولیس جو ہے جی اس نے ایف آئی آر ہمارے ملک کے ٹاپ بڑے بڑے لیڈروں کے خلاف جو ہے ایف آئی آر. آپ اب بڑے لیڈر ہیں ہی نہیں ماجد بھائی, تو آپ کے خلاف کیا کوئی ایف آئی آر؟
کوئی ایف آئی آر نہیں جی,
آرام سے بیٹھے ادھر ٹورنٹو میں آپ, ادھر کینیڈا میں آپ بیٹھے. اچھا جی, جتنے بھی وہ تھے انہوں نے کہا جی ایک تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے گورنمنٹ کے آرڈرز کے وائلیشنز کیے بلکہ انہوں نے ایس او پیز جو ہیں ان کو بھی فالو نہیں کیا ہے. تو اب جو ہے لاہور کے لاری اڈا, تو تیرے اور میرے گھر کے بیچ میں ہے لاری اڈا سنا نا, تو ان کے مینارے پاکستان کی ریلی اور جو ہے وہ ان کے گھروں کے بیچ میں لاری اڈا پڑتا تھا. تو لاری اڈا جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ یہ جو کمپلینٹ لگائی گئی ہے, اور یہ محمد ضمیر صاحب جو ہیں سیکورٹی انچارج جو تھے گریٹر اقبال پارک کے, انہوں نے لگائی ہے. اور 40 MLN کے لیڈرز ہیں اور باقی دوسرے لوگ ہیں. تو اس میں سے ظاہر ہے کہ مریم نواز, احسن اقبال, شاہد خاقان عباسی, خواجہ آصف, مریم اورنگزیب, رانا ثناء اللہ, ایاز صادق, جیسے وہ ٹرمپ صاحب کی
سارے نیک لوگ.
ہاں نیک لوگ, نیک لوگ جیسے ٹرمپ صاحب کو آپ کا نام لے کے آپ کو ہنسی آتی ہے نا, ویسے رانا ثناء اللہ کا بھی بڑی انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہے وہ بھی, بہت. ایاز صادق, طلال چودھری, خواجہ سعد رفیق, اعظم بخاری اور جاوید ہاشمی, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے ایف آئی آر کی ہے. تو اب دیکھیں گے اس کا کیا ہوتا ہے.
کسی نے کہا نا کہ مونچھیں جو ہیں وہ مرد کی نشانی نہیں ہے, مونچھیں مرد کی نشانی نہیں ہے, رانا ثناء اللہ کے پاس مونچھیں.
لیکن باتیں تو وہ بڑی زبردست کرتے ہیں.
اچھا
بڑی مزے کی باتیں کرتے ہیں, آپ کبھی سنیں آپ کو جو ہے وہ جیمی فیلن وغیرہ کے کامیڈی شو دیکھنے کی بالکل ضرورت نہیں.
کیا بات ہے,
بس آپ دیکھ دل آپ کا خوش ہوتا رہے گا دیکھ.
ان کو بھی چاہیے وہاں پر سیٹرڈے نائٹ لائف شروع کر دیں.
ہاں سیٹرڈے, چلو یہ سنڈے نائٹ لائف کر لینا,
یہ سنڈے نائٹ لائف.
ہاں یہ بالکل ہی نقل نہ کریں ان کی,
سنڈے نائٹ لائف,
سنڈے نائٹ لائف. ہاں ہاں بالکل, میں مشورہ ان کو دیتی ہوں.
جمعہ نائٹ لائف.
ہاں 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 جمعے کے جمعے,
نیک لوگ ہیں نا,
نیک لوگ ہیں جمعے کے جمعے. بالکل ٹھیک ہے ماجد بھائی, ایسے ہے. اچھا جی, پاکستان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب, انہوں نے آج جو اینٹی ریپ آرڈیننس 2020 جو ہے اس کو آج انہوں نے اپروو کر دیا ہے.
اچھا جی,
انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو لوگ عورتوں اور بچوں کے اسپیشلی جس میں وکٹمز ہوتے ہیں ریپ کیسز میں, تو اس میں اسپیڈی ٹرائلز ہوئیں گے, اور کیمیکل کیسٹریشن کا بھی انہوں نے حکم دے دیا ہے کہ اگر کوئی وکٹم ہوئے گا تو اس کو جو ہے یہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جتنے یہ کیسز کورٹس میں جائیں گے 4 months کے اندر ختم کرنے کی ان کو ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے جو پرائم منسٹر صاحب کا اینٹی ریپ کرائسس سیل ہے اس کے اندر جو ہے ایگزامینیشنز جو بچوں کی اور عورتوں کی ہوئیں گی ود ان جو ہے وہ 6 hours ہوئیں گی. تو فٹافٹ یہ سارے کام جو ہیں یہ کیے جائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ کنٹری وائڈ ایک رجسٹری جو ہے وہ بھی ہم کھول رہے ہیں, جس میں کہ آپ یہ سیکشوئل اوفینڈرز جو ہیں ان کا جو ہے ایک ڈیٹا بیس جو ہے نادرا کی ہیلپ سے ہم قائم کریں گے. تو یہ ایک اچھا,
دیٹس اے گڈ نیوز,
دیٹس اے گڈ نیوز. ہاں جی بالکل, یہ تو سزائیں ملنی چاہیے بالکل. اچھا ماجد بھائی, آپ تو کراچی کے, آپ کو پتا ہی ہوگا کہ بلاول چورنگی کراچی کے اندر جو کہ ایریے میں آج ایک اطلاع ملی تھی کہ وہ بلاول ہاؤس کے باہر ایک گاڑی بڑی کوئی ایک مشکوک سی پھر رہی تھی, تو وہ جو بام ڈسپوزل اسکواڈ جو تھا اس کو بلایا گیا وہاں پہ, تو انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ ایک گاڑی تھی اس میں دو لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ امپرووائز جو ڈیوائس ہوتی ہے وہ اس کے اندر تھی اور وہ وہاں پہ کر سکتے تھے, ایک دھماکہ کر سکتے تھے, ایکسپلوژن کر سکتے تھے. بہرحال وہ وہاں پہ اس ایریے میں جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں اور وہ دونوں فارنرز ہیں, لیکن ان کے نام ظاہر نہیں کیے ہیں پولیس نے, تو وہ بہرحال ان کو پکڑ لیا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ایک لوکل ریسٹورینٹ تھا, یہ گاڑی اس کو بلانگ کرتی تھی, لیکن ابھی تک لوکل ہوٹل کا ریسٹورینٹ کا نام کیا ہے اور یہ لوگ کیا ہیں ان کے نام ابھی چیزیں سامنے نہیں آئیں.
دے آر فارنرز
اور یہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, دا انویسٹیگیشن از آن. اچھا جی, وی آر رائٹ ایٹ دا اینڈ آف آور نیوز. اور آج میں نے آپ کو جیسے کہ سرخیوں میں بتایا تھا کہ ارجن رام پال اور ان کی جو پارٹنر ہیں گیبریلا, ان کو آج جو ہے پھر سے این سی بی جو ہے انہوں نے جو ہے بڑی مشکوک جو نظروں سے دیکھتے ہیں, تو آج پھر سے ارجن رام پال کو این سی بی جو ہے نارکوٹکس کنٹرول بورڈ جو انڈیا کا انہوں نے بلایا ہے کوشچننگ کے لیے فار دا سیکنڈ ٹائم. آپ کو پتا ہے پہلی دفعہ بھی جب بلایا تھا تو 7 گھنٹے کی ان سے کوشچننگ کی تھی, اور گیبریلا کے جو اصل میں بھائی ہیں وہ نارکوٹکس کے کچھ چکر میں ہیں, جی سی لیوس ڈیمیٹری ڈیاس, یہ جو ان کے بھائی ہیں گیبریلا کے یہ انوالوڈ ہیں اس کے اندر. تو جب پولیس نے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی تو ان کو پتا چلا کہ یہ لڑکا جو ہے ڈرگ پیڈلرز کے ساتھ بھی ان ٹچ ہے, بالی ووڈ کے سیلیبریٹیز کے ساتھ بھی ان ٹچ ہے, اور یہ جو ہے ان ٹچ ہے شووک کے ساتھ بھی جو ریا چکرورتی کا بھائی تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ ریا چکرورتی, ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سشانت سنگھ راجپوت کی گرل فرینڈ تھی, تو سشانت سنگھ راجپوت کا جو مرڈر کیس ہے اس میں جو یہ ڈرگ کا جو ایک اینگل تھا اس کو وہ این سی بی جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو آج بھی جب ارجن رامپال کو بلایا گیا ہے تو اس کی بیسز یہ تھی کہ جو ان کا گھر ہے بینڈرا میں اس کے اندر انہوں نے جب ریڈ کی تھی تو ان کو کچھ ایسے میڈیسنز ملی تھیں جو کہ الاؤڈ نہیں ہیں ٹو ایٹ انڈر سرٹن ایکٹس ان انڈیا, تو اس لیے اب ان کو دوسری دفعہ بلایا گیا اور ان سے پوچھ کر جو ہے وہ شروع کی گئی ہے. اچھا ماجد بھائی, اب امیروں والی خبریں آ رہی ہیں تو آپ جو ہے نا ذرا پلیز فیسن یور سیٹ بیلٹ, ٹھیک ہے جی. فوربز میگزین نے,
جی جی
ہاں جی, نہیں یو ڈونٹ ہیو ٹو پٹ یور سیلف ان اسٹریٹ جیکٹ, آئی ایم جسٹ سیئنگ فیسن یور سیٹ, تو وہ آپ بیلٹ جو ہے ذرا ڈھیلی کر رہے ہیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ان اسٹریٹ جیکٹ. اوکے,
نہیں وہ میں نہیں چاہتا کہ میں
زیادہ وہ ہو جائے نا, تو بس اسی کی ڈھیلی سی ایک بیلٹ,
بہت ہاں بہت زیادہ ہلنا شروع کر دوں.
ہاں ہاں, نہیں نہیں ہلنا نہیں ہے آپ نے, یہ سنیں ذرا امیروں کی کہانیاں سنیں بڑے لوگ کیسے ہوتے ہیں, کتنا پہ ہے ان کے پاس. اچھا جی, فوربس کی دو بیک ٹو بیک آج میرے پاس خبریں ہیں. ایک تو یہ کہ فلپس نے وہاں پہ امریکہ میں جناب یہ جی ایک ون ڈراپ فاؤنڈیشن ہے, یہ ایک چیریٹی ہے جو کہ غریب ملکوں کے اندر جا کے صاف پانی جو کلین ڈرنکنگ واٹر ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرتی ہے, اینڈ دے ایکچولی ہیو اسپینڈ ملینز آن دیز پروجیکٹس اینڈ آل دیٹ جسٹ انشورنگ کہ بچوں کی ہیلتھ ٹھیک رہے, لوگوں کی ہیلتھ ٹھیک رہے, کیونکہ بہت علاقوں میں جب وہ جاتے تھے تو دیکھتے تھے وہ بالکل مٹی والا پانی پی رہے ہیں جو کہ بیماریاں لاتے تھے ان کے اندر. تو فلپس نے آج جی بہت سارے لوگوں کو میسیجز بھیجے تھے کہ ہم ایک آکشن کرنے والے ہیں, تو اس میں زیادہ تر جو ہالی ووڈ کے اسٹارس تھے انہوں نے اپنا مرچنڈائز بھیجا تھا اس میں کہ ہم آپ کو فار فری دے رہے ہیں, آپ آکشن کر لیں اور جتنے پیسے جائیں ملیں گے آپ کو تو ون ڈراپ فاؤنڈیشن کو آپ یہ دے دیں. تو اس کے اندر جی پال نیومن کی رولیکس واچ جو کہ ان کو ان کی وائف نے دی تھی ماجد بھائی, اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے ڈرائیو سیف یا ڈرائیو ناٹ فاسٹ ایسے کر کے کچھ, بڑی آئیکونک ہے کیونکہ وہ اسپیسیفکلی انہوں نے رولیکس والوں کو کہا تھا کہ لکھو یہ اس کے اندر. تو یہ وہ والی واچ جو ہے وہ 5.5 million یو ایس ڈالر کی جی وہ واچ بکی ہے.
کیا بات ہے.
اس کے علاوہ جی سلویسٹر سٹون صاحب جو ہیں, سلویسٹر سٹالون صاحب جو ہیں ان کی بھی کچھ واچز وہاں پہ گئی ہیں اور وہ بھی 3.1 million یو ایس ڈالرز کی بکی ہیں.
کیا بات ہے جی
جناب. اور یہ جو ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ جیسے جان لینن وغیرہ جو ہیں انہوں نے بھی اپنی چیزیں بھیجی تھی تو وہاں پہ بھی وہ تو وہ ملینز آف ڈالرز کی وہ چیزیں بکی ہیں اور وہ سارا پیسہ جو ہے اس چیریٹی کو اب دیا جا رہا ہے. اور آپ ان کے بھی حوصلے دیکھیں نا ماجد بھائی, اتنی اتنی مہنگی واچز اور چیزیں اور وہ دے دیتے ہیں کہ چلو جی ہم چیریٹی میں دے رہے ہیں.
آف کورس یس, اینڈ یہ جو بڑے لوگ ہیں یہ واقعی میں بے انتہا پیسہ چیریٹیز کو دیتے ہیں,
بہت زیادہ
چیریٹیز کو, جو میرے اور آپ کے نیوز میں آتا نہیں ہے مگر اسٹل دے گیو الاٹ آف. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ان کو انکم ٹیکس بچانا ہوتا ہے, واٹ ایور, देयर आर सो मेनी वेज, देयर आर सो मेनी वेज ऑफ इनकम टैक्स बचाने के लिए, बहुत सारे तरीके होते
हैं, लूपहोल्स हैं, लॉ में बहुत लूपहोल्स हैं,
मगर ये करना कि वो चैरिटीज को दे के अगर उनका टैक्स बचता है तो बाय ऑल मींस, बड़े बड़े लोग मैं जानता हूँ कि जो चैरिटीज को, डोनाल्ड ट्रंप साहब, यू नो, एक पाई का टैक्स नहीं दिया उन्होंने, मगर चैरिटीज को नहीं दिया.
हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, दैट्स राइट. तो ये बड़े हौसले की बात है मजीद भाई, exactly. इतनी एक्सपेंसिव चीजें अपनी देनी कि जी हाँ आप ले जाएं, तो हम तो एक रिबन भी ना दें भाई. अगर हमने शनेल से एक रिबन खरीदा है तो हम तो कभी ना दें. अच्छा जी, अच्छा जनाब, फोर्ब्स मैगजीन की आज एक दूसरी एक स्टोरी है और जिसमें कि उन्होंने वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज जो हैं इन दिस टाइम पेंडेमिक के जमाने में, उनकी आज एक लिस्ट छापी है और इसके अंदर जो काइली जेनर है शी इज एट द टॉप. और इन्होंने जो अपना इनका जो था काइली कॉस्मेटिक्स जब इन्होंने बेचा था अपना उसका कुछ स्टेक कोटी को, तो शी अर्न्ड 590 million US dollars. तो एज अ रिजल्ट शी इज ऑन द टॉप. और नंबर टू जो है उस पे कानिया वेस्ट है जिनको, जिन्होंने सिक्योर किया है इन दिनों में 170 million. इनकी जो डील हुई थी एडिडास के साथ उसकी वजह से. एंड देन रॉजर फेडरल नंबर थ्री पे हैं और ये फॉर द फर्स्ट टाइम एक स्पोर्ट्समैन इसमें है. और भी कुछ स्पोर्ट्समैन अब आने शुरू हो गए हैं इस लिस्ट के अंदर. तो ये रॉजर फेडरल जो है इनकी अब नेटवर्थ हो गई है 106.3 million US dollars. अच्छा जी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 105 million US dollars ऑन नंबर फोर नंबर. और वो कहते हैं कि ये रोनाल्डो दुनिया का पहला अब प्लेयर बन गया है जिसकी ओवरऑल वेल्थ जो है अब 1 billion को टच कर रही है यूएस डॉलर्स. ओके, नॉट कनेडियन और ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, यूएस डॉलर्स. ओके जी, इसके अलावा जो ऑफकोर्स ये तो हो ही नहीं सकता कि जो है रोनाल्डो के पास इतने पैसे हुए तो मेसी के पास ना है, तो मेसी इज नंबर फाइव. ठीक है, इसके बाद जो है रायन रोनल्ड्स जो है वो 18th नंबर पे हैं विद 71.5. बिली एलिश जो है वो 43rd है विद 53 million. जेरी सिनफील्ड जो है वो 46th नंबर पे है 51 million के साथ. और ज्यादातर ये जो एक्टर्स हैं इनको नेटफ्लिक्स ने बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, जो ये जो नेटफ्लिक्स, क्योंकि सिनेमा हॉल्स बंद हैं, लोग घरों में बैठे हुए हैं, तो नेटफ्लिक्स की बहुत ज्यादा सीरीज बन रही थी तो वो उसमें ये एक्टर्स जो काम कर रहे थे और वो रिलीज भी कर रहे थे नेटफ्लिक्स वाले, तो उसमें ये. अच्छा जी, इसके अलावा जो है अब 6th पोजीशन पे जो है डायरेक्टर टेलर पेरी है 97 million के साथ. नेमर जो है अगेन सॉकर प्लेयर 95.5 million है ऑन नंबर 7. और जो रेडियो के एक होस्ट हैं, मजीद भाई आप कैसे होस्ट हैं, क्या दिए, देखिए रेडियो के होस्ट हॉवर्ड स्टर्न 90 million US dollars.
यू नो हु हॉवर्ड स्टर्न इज,
केस के साथ एट्स
हॉवर्ड स्टर्न.
क्यों, आप भी तो कनाडा के हॉवर्ड स्टर्न.
नो यू नो
स्टर्न है ना.
No. What Howard Stern does, nobody else can do.
बस चलिए, बस ठीक है महेश भाई. और जो है लेब्रॉन जेम्स जो है वो 88.2 million के साथ 9th नंबर पे हैं. और लेकिन अभी भी जो अब वो कहते हैं जी कि ये जो सारे सेलिब्रिटीज हैं इन दिनों में ऑल टुगेदर इन्होंने 6.1 billion dollars से ज्यादा जो है इन्होंने कमाया इन बैड डेज में.
नहीं, मगर उनके तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, चाहे कुछ हो
दुनिया में. साइन की थे
मैंने फौरन अभी,
आप एक मिनट में आप साइन करें,
आप मेरी आंख खोल दिए, मैं अपने पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा.
हाँ, नाइकी के साथ, एडिडास के साथ,
नहीं साज आवाज के साथ पहले.
इधर भी आपको पैसे मिलने अच्छा. हाँ, ये मिलियंस की हम बात कर रहे हैं. अच्छा, ये हम 10 डॉलर कनेडियन की बात नहीं कर रहे.
नहीं,
हाँ, तो अभी फोर्ब्स मैगजीन कहता है कि 2019 का जो इनका लेवल था उससे 200 मिलियन लेस अभी इन्होंने कमाए. तो ये और भी ज्यादा कमा सकते थे अगर हालात अच्छे रहते, अगर दुनिया वैसी चल रही होती तो.
नहीं, मुझे कमाल की बात ये है कि वो उसका जो ब्लैक वुमन है, व्हाट्स हर नेम, शी इज नॉट देयर,
ओपरा विनफ्री. हाँ, वो असल में इन्होंने जो ना कंपार्टमेंटलाइजेशन भी की हुई है ना.
हाँ.
वो कहते हैं कि richest जो हैं वो प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड भी.
शी इज द richest वुमन इन द वर्ल्ड.
हाँ, richest वुमन इन द वर्ल्ड जो है उसके अंदर वो आएगा, जैसे कि richest जो एक्टर है, फिर रिचेस्ट एक्ट्रेस है, फिर रिचेस्ट, तो मतलब इस तरह करके ना इन्होंने फोर्ब्स वालों ने वो किए होते हैं।
मगर इसमें आपके शाहरुख खान भी आएंगे इसमें, तो
वो तो फिर नीचे
खान साहब आएंगे ना, वो लोग भी आएंगे, वो लोग भी दे मल्टा मिलियनर्स।
यस एब्सोल्युटली,
क्योंकि उनकी
वो जो 100 की लिस्ट है ना, वो तो नहीं है ना मेरे पास, तो वो जो फर्स्ट 100 होते हैं ना उनके अंदर फिर ये सारे आ जाते हैं, या 150 जो वो छापते हैं ना, फोर्ब्स की लिस्ट जो होती है, जैसे कि वो छापते हैं 150 richest people of the world,
इसमें हमारे नवाज शरीफ भी आएंगे,
जरदारी
साहब भी आएंगे, मौलाना साहब भी आएंगे, इतनी बड़ी जमीन मिली है उनको,
64 कनाल मस्जिद, वो भी इस्लामाबाद में,
हाँ इतना आसान काम तो नहीं है ना, तो वो सारे
पता नहीं कितने उन्होंने जुगाड़ लड़ाए होंगे। आपने सीखे नहीं है वो जुगाड़ में,
नहीं,
जाया की जिंदगी आपने,
देख लीजिए, देख लीजिए कि वो जुगाड़ जुगाड़ ही तो नहीं आया,
वो जुगाड़ नहीं आया, बेकार गई आपकी जिंदगी, बेकार गई,
जुगाड़ नहीं आया,
जुगाड़ नहीं आया आपको, लगाया होता तो आज हमने भी कुछ और पैसे कमाए होते,
पैसा कमाला,
पैसा कमाले, बिल्कुल। हाँ जी, तो मोहित भाई ये थी आज बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी खबरें,
क्या बात है,
आज रात को तो आपको नींद नहीं आएगी,
दिल खराब कर दिया आपने, नहीं
हाँ बस आपका दिन खराब हो गया ना, देखें मैंने इसीलिए किया क्या आपका दिन भी खराब हो या रात को आपको नींद भी ना आए
गई
अच्छा जी, अच्छा जी, हमारी एब्सोल्युटली लास्ट न्यूज टुडे इज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है जी पीसीबी, उसने कहा है कि जो वुमेन हमारी जो नेशनल टीम है वो अब टूर करेगी साउथ अफ्रीका का, और वहां पे वो 3 ओडीआईज और 3 T20s खेलेंगे, और वो कह रहे हैं कि बिटवीन जनवरी 20th टू फरवरी 3rd, वो कह रहे हैं क्योंकि हम इनको तैयार करना चाहते हैं कि ये जो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है, पहले क्वालिफायर होएगा 2021 में और फिर मेन इवेंट 2022 में होएगा न्यूजीलैंड में, तो अगर क्वालिफाई करेंगे तो फिर मेन इवेंट खेलेंगे ना, तो कहते हैं इसके लिए हम इनको, और वो कहते हैं कि ये जो मैचेस होंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में डर्बन में हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये साउथ अफ्रीका की भी टीम को ग्रूम करेंगे,
इनको अच्छी कुछ कोचिंग मिल जाए ना, तो दे आर वेरी गुड प्लेयर्स,
वेरी स्मार्ट गर्ल्स,
वेरी आउटगोइंग गर्ल्स, अगर
वेरी टैलेंटेड,
दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अगर थोड़ी सी इनको कोचिंग मिल जाए ना, तो आई थिंक, और वो कोचिंग भी किससे मिले, जैसे हमारे जो टेस्ट प्लेयर्स वगैरह हैं,
वसीम अकरम टाइप
ना, तो वैसे लोगों को अगर हायर करके इनको थोड़ी सी कोचिंग मिल जाए, तो मेरा ख्याल है कि दे क्वालिफाई क्या, दे विल बी डूइंग वेरी वेल इन द वर्ल्ड, क्योंकि अगर आप पूरी दुनिया का देख लें तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तीन ही कंट्रीज हैं जहाँ की औरतें जो है उनकी अच्छी टीमें हैं, तो ये बात नहीं, और
पाकिस्तान की टीम
पाकिस्तान की टीम इतनी कोई पीछे नहीं है उनसे,
एग्जैक्टली
दैट्स व्हाट आई मीन, कि वो उनको थोड़ी सी ग्रूमिंग मिल जाए, थोड़ी सी कोचिंग मिल जाए, and they could be, they are not too far away from becoming the champions.
Now that my cousin is at PCB, main usko likhti hu ki bhai lao ek Steve Waugh jaisa banda inko coach karne ke liye.
Nahi nahi, magar hamare paas bhi bahut Steve hai, you know, hamare country mein bhi bahut sare Steves hain, to wo jo hai wahan par unko, un logo se madad mange, un logo se kahe ki bhai aap aake inko coach kare, at least for next couple of years aap kar de inko coach, you know, coach karke inko, they, everything is not money, and हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनके पास पैसों की कमी नहीं है, you know, अगर बोर्ड के पास पैसा भी नहीं है, तो उनसे कुछ ऐसी डील करके कि भाई आप आए, आप जरा आके इनकी हेल्प तो करें, कम से कम ऑन बेसिस ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी, you know, क्योंकि पाकिस्तान से ही उन्होंने पैसा कमाया है जो, और नाम कमाया है जो क्रिकेटर्स थे हमारे, तो उनको चाहिए कि वो भी आके थोड़ी सी इनकी, इन लोगों की हेल्प करें, एंड आई एम टेलिंग यू दे आर नॉट टू फार अवे।
तो वसीम अकरम साहब जो हैं, जैसे जाते थे वहाँ पे जो कोलकाता नाइट राइडर्स की करते थे कोचिंग, शाहरुख खान की जो टीम थी आईपीएल में, तो आप देखें कितना जीतता भी होता था वो जो है, तो मुझे लगता है कि अगर वसीम अकरम जैसे आदमी को के साथ अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बना लें,
ऐसे
उसके साथ बना लें, तो ये लड़कियों को बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकता है, बहुत अच्छे से,
क्योंकि
ऑलराउंडर था ना माजिद भाई,
वो स्पॉन्सरशिप भी जो है ना, वो ऐसे नामों के साथ स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है,
आ जाएगी आ जाएगी
ना, जब आप वसीम अकरम टाइप चीज लोगों को लेके आएंगे ना, तो वहां पर, मगर वहां पर ये जो
पॉलिटिक्स है,
पॉलिटिक्स जो है ना, वो पॉलिटिक्स ने तबाह किया हुआ है, पॉलिटिक्स ने तबाह किया हुआ है, अदर देन दैट, अगर पॉलिटिक्स को साइड पे रख के आप मुल्क और कौम के लिए कुछ काम करना चाहें, तो ये दीज आर द पीपल, हमें कोई बाहर का फॉरेनर की जरूरत नहीं है कि बाहर से कोई कोच लेके आए, हमारे पास खुद इतने टैलेंटेड लोग हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी क्रिकेट में गुजारी है, उनसे कहें आप दे विल डेफिनेटली डू इट।
ये जब पाकिस्तान एक दफा एक बहुत ही बैड पैच आ गया था ना और पाकिस्तान बहुत हारने लगा था, तो इमरान खान साहब का एक बयान आया था, वो कहते थे मेरा दिल बड़ा टूटता है कि जिस कौम में दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट का टैलेंट है वही जो है आज सबसे पीछे है। तो आई मीन अ पर्सन लाइक इमरान खान सेइंग लाइक दिस, जिसने हाईएस्ट लेवल पे खेली हुई है क्रिकेट, तो विच मींस के टैलेंट है ना कौम के,
बेइंतहा टैलेंट है, बेइंतहा टैलेंट है, मगर टैलेंट इज हिडन टैलेंट, पॉलिटिक्स ने मार दिया
है। हाँ, सामने आने नहीं देते हैं जो टैलेंटेड बच्चे।
हाँ, जितने अपने पॉलिटिशियंस जो है ना वो जो है वो बीच में आके अपने किसी भांजे को भतीजे को या दोस्त को इसको उसको वहां पे उनके आदमियों को लेके आने के लिए जो टैलेंट है उसको आप लेके आए ऊपर।
माज भाई आप तो ये देखें ना कि ठीक है बहुत ही काबिल जर्नलिस्ट हैं जो हैं हमारे वो जो थे क्या नाम है वो जो कहते थे मेरे पास एक चिड़िया है नजम सेठी साहब, बहुत ही काबिल जर्नलिस्ट होंगे आई एम श्योर। अब उनको जब आप क्रिकेट का हेड बनाएंगे, देखे ना एक जर्नलिस्ट का क्रिकेट हेड होने से वो जो है फिर आपको एक हिंदी
That was a disaster.
हाँ, संबंध क्या है, कोई संबंध नहीं है ना,
That was a disaster.
ऐसे लोगों को आप लाएंगे भाई वो बहुत ही काबिल इंसान है अपनी फील्ड में राइट, उनको आप पैमरा का हेड बना देना, पैमरा का हेड बनाए आप जैसे अफसार को बनाया था अफसार आलम, ही वाज अ जर्नलिस्ट और फिर उसको पैमरा का हेड, तो आप नजम सेठी को पैमरा का हेड बना दें, दैट वुड मेक सेंस राइट, या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में कोई उनको रोल दे दें, थिंग्स लाइक दैट। पीसीबी का हेड आप बना रहे हैं उनको भाई, एक जर्नलिस्ट को, ऐसे तो काम नहीं चलेंगे ना,
फिर टोटल डिजास्टर। आप ये देख लें कि उस जमाने में हमारी टीम जो है सिवाय हारने के और उसने कुछ नहीं किया।
हाँ, तो वही वो कहते थे ना हमारे पंजाब में, तो कहते थे कि नजम सेठी साहब नु ते बल्ले दा पीछा पता ही नहीं कि पीछा पड़ सके।
हाँ,
सकीड़ा
सही बात भी है, वो
नजर भी उनकी कमजोर है थी ना, तो इसलिए भी वो कहते थे, कहते उन्होंने तो पता ही नहीं पीछा पासा केड़ा थे, सिद्धा पासा केड़ा, तो उसने ला देते थे जी।
चलिए साहब, 5:59:13 वक्त हुआ है हमारा, बस अब हम रेगुलर प्रोग्रामिंग की तरफ चलेंगे। शादी जी थैंक यू सो मच, कुछ एक कमर्शियल आईडी लेंगे और उसके फौरी बाद आप हमारे साथ जुड़े रहिए। 4166201778 हमारा फोन नंबर है। अपनी दुआओं में हमेशा हमें याद रखा करें, हम आपके लिए दुआगो होंगे, आप दुआओं में याद रखें, खास तौर से हमारे दोस्त हमारे भाई मुजफ्फर अली को अपनी दुआओं में जरूर